मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन चुनावों को आधार बनाकर आपको सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, खासकर लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में, उस पर मैं बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि दो ऐसी खबरें हैं जिनकी सामान्य सी जानकारी आपको दी जानी चाहिए, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बाद में मैं इत्मीनान के साथ इस मुख्य विषय पर आपसे बातें कर सकूंगा। पहली बात ये फ्रेंड्स कि कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था और आप लोगों ने कर भी लिया होगा या बिना किए ही आप जानते होंगे उसके बारे में, जो चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में आया है और आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के चेन्नई में तो उसने क्या कहर बरपा दिया है। यह दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि अखबारों में इस तूफान को जो नाम दिया जा रहा है वह है मिचौंग, लेकिन रेडियो न्यूज में जो इसका उच्चारण किया गया है वह है मिगजाम। अंग्रेजी में जो इसकी स्पेलिंग है वो है MICHAUNG, लेकिन आकाशवाणी का उच्चारण है मिगजाम। इसमें हम किसे सही माने तो मुझे ऐसा लगता है कि आकाशवाणी के उच्चारण को हमें सही मानना चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी में जब किसी संज्ञा का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो कहीं न कहीं कंसल्ट किया जाता है, उसके बारे में जानकारियां जुटाई जाती हैं और फिर उस शब्द का उच्चारण निर्धारित किया जाता है। तो यह है मिगजाम, MICHAUNG। ये जो नाम है मिगजाम, ये म्यांमार ने दिया है, जिसका पुराना नाम है वर्मा, आप जानते हमारा पड़ोसी देश है, और इसका अर्थ होता है लचीलापन और साथ ही साथ दृढ़ता। दृढ़ता इस मायने में सहन शक्ति के मामले में, फोर्टिट्यूड जिसे आप कहते हैं, रेजिलियंस एंड फोर्टिट्यूड, यानी कि जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, अपनी दृढ़ता को बनाए रखता है। लचीलापन प्लस दृढ़ता आप कह सकते हैं, कोमल प्लस कठोर आप कह सकते हैं, जो भी आप इसे कहना चाहें। दूसरी बात कि राज्यसभा ने डाकघर विधेयक पारित कर दिया है। इससे पहले हमारे पास जो डाकघर कानून था वो 1898 का बना हुआ था, सोच करके देखिए लगभग 125 साल पुराना कानून, अब उसका संशोधन पारित किया गया है और संशोधन में खासकर सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि यदि डाकघर के जो अधिकारी हैं उन्हें कोई एक ऐसी सामग्री लगती है कि उससे सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है तो उस सामग्री को रोक सकते हैं, खोलकर देख सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और दूसरी व्यवस्था यह भी है कि हमारे डाकघर आप देख रहे हैं कि चूंकि बैंकिंग प्रणाली धीरे धीरे काफी फैलती चली जा रही है, उसके नए नए स्वरूप हमारे सामने आ रहे हैं, तो डाकघर एक प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे अप्रासंगिक होते जा रहे हों, तो कैसे इन्हें और ज्यादा जीवंत और उपयोगी बनाया जाए, तो इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसे नागरिकों के सेवा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, और बहुत से डाकघर में इस तरह के प्रयोग होने शुरू हो गए हैं, तो इस तरह की भी व्यवस्था इस विधेयक के अंतर्गत की गई है। और मैं आपको यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बताना चाहूंगा कि जिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने जा रहे हैं उसमें बकायदे एक पोस्टल सर्विसेज भी होती है, पोस्टल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, राइट। आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं, और जो मुख्य विषय है दोस्तों वो यही है कि हमारे 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है लोकतंत्र के बारे में। मैंने जो इसका संदर्भ लिया है वो खासकर इस मायने में लिया है कि अब फिर से एक बार बहुत पहले ये बात हो चुकी थी, 3-4 साल पहले, ज्यादा पहले की बात नहीं है, और अभी फिर से एक बात यह चली है कि पूरे देश के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। जब हम कह रहे पूरे देश के चुनाव एक साथ, इसका मतलब है कि लोकसभा के चुनाव और साथ ही राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव, इन सब के चुनाव एक साथ ही कराए जाएं। इसको लेकर के ढेर सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं और शायद काफी कुछ बातें आपको मालूम भी होंगी। देखिए, हमारा संविधान तो एक सिद्धांतों का ग्रंथ है, उसमें सिद्धांत दिए हुए हैं, या कह लीजिए मैथमेटिक्स की एक ऐसी किताब है जिसमें फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन इन फार्मूलों के आधार पर जब आप गणित को हल करते हैं तो पता नहीं कितने तरह के गणित हल हो रहे होते हैं। सिद्धांतों को जब आप व्यवहार में अप्लाई करते हैं तो पता नहीं कितने तरह की व्यवहारिक चीजें सिद्धांतों से निकल करके आती हैं। यही होता है संविधान के साथ भी, यही है कि संविधान में फार्मूले हैं लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो हमें समाज में देखने को मिलता है, और राजनीतिक दल उसके आधार होते हैं, या कह लीजिए कि वो माध्यम होते हैं जो पूरे के पूरे संविधान को हमारे सामने व्यावहारिक रूप में मुख्यतः प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दल कह लीजिए या सरकार कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दल कहना ज्यादा सही होगा। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर के मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 या 3 साल पहले मुख्य परीक्षा में भी बकायदे एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, सिविल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में समझें, तभी कहीं जाकर मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर दे सकेंगे। और यहां तक कि यदि आपने विषय को समझ लिया है तो प्रारंभिक परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, लगता है कि बस कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, उन्हें आप हल कर सकेंगे। तो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं और क्यों ऐसे रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब मैं मुख्य बातों पर आता हूं। जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं उसका केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है। उसका सेंट्रल पॉइंट यह है कि जो लोकतंत्र है, हम व्यावहारिक स्तर की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र है वो है क्या? कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि जनता बताती है कि हमारी जरूरतें क्या हैं और सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है, यानी कि जनता सरकार का मार्गदर्शन करती है। जनता सरकार का मार्गदर्शन कैसे करती है? अपने चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, बस दैट्स ऑल, यही लोकतंत्र है। तो अभी चुनाव हुए तो डेफिनेटली जनता ने जो अपने प्रतिनिधि चुने हैं उनके माध्यम से वो कुछ संदेश दे रही है, और ये जो संदेश दे रही है वो केवल राज्यों के स्तर पर ही नहीं है बल्कि केंद्र के स्तर पर भी है। केंद्र सरकार को भी संदेश जा रहे हैं, और केवल ये नहीं कि 5 राज्यों और केंद्र सरकार को संदेश जा रहा है बल्कि पूरे के पूरे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये संदेश जा रहा है कि अब हमारा देश क्या चाहता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर के खासकर इस बात का विरोध किया जाता है कि नहीं, पूरे देश के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के मध्य में चुनाव होते हैं, चाहे वो छोटे से राज्य का ही चुनाव क्यों ना हो, तो एक प्रकार से जनता इस छोटे से सैंपल के माध्यम से, नमूने के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त कर देती है, और ये इच्छाएं ऐसी हैं जो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। तो देखिए, इस बार के जो चुनाव हुए हैं उनमें किस तरीके से इन बातों की झलक दिखाई देती है, आइए हम इसे थोड़ा सा जानते हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहना शुरू किया था अपने चुनाव अभियान में कि यदि वो सत्ता में आई तो पूरे देश में जाति गणना करवाएगी, जाति के आधार पर जनगणना करवाएगी, और इसके बाद प्रतिशत के आधार पर, मतलब एक सिद्धांत के तौर पर था कि वो आरक्षण देने की व्यवस्था करेगी, जाति जनगणना, और इसको बहुत हाईलाइट किया था कांग्रेस पार्टी ने। आप जानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है, भले ही वो तेलंगाना में सरकार बना रही हो, लेकिन इनफैक्ट एक कहना गलत नहीं होगा कि जो दूसरे राज्य थे उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस को नकार सा दिया है, 2-2 राज्यों से उसकी सरकारें खत्म हो गई हैं, और हार भी जो हुई हो बहुत बुरी तरह से हार हुई है। इसका मतलब है कि जनता ये कह रही है कि नहीं, हमें जाति पर आधारित गणना नहीं चाहिए, आरक्षण जो है उसको बहुत ही तार्किक रूप से दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन जाति पर आधारित गणना नहीं, क्योंकि इससे जो समाज है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा विभाजित होगा। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इन राज्यों की जनता ने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया है, केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन। कुछ दिनों पहले आपने देखा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी पिछले बुधवार को, और उसमें केंद्र सरकार ने बकायदे जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको कंटिन्यू किया, 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। इसका मतलब है ठीक है चुनाव पहले हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये चाह रही है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें कंटिन्यू किया जाए, उनकी जरूरतें हैं। और बल्कि अभी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक सफलता मिली है वहां भी पार्टियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ी संस्कृति में लपेट करके बताने की कोशिश की है। अब जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें बकायदे ये बात कही गई कि हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाएंगे, आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित होगा वो तो होगा ही, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। इसका मतलब है कि MSP एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो रहा है, और जनता चाहती है कि नहीं उनके उत्पादन का अधिक मूल्य मिले। और आप पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ था उसे याद करने की कोशिश कीजिए, उसमें यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी फिर से इतनी ज्यादा मतों से जीत करके आई है, इतनी ज्यादा सीटों से जीत करके आई है, उसका कारण यह था कि यहां के चीफ मिनिस्टर ने बकायदे लाडली बहना योजना की जो राशि थी उसमें वृद्धि कर दी थी, और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में महिला मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिला मतदाता पिछली बार से 2% ज्यादा रही हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं का भी जो वजन है सरकार में बढ़ रहा है, और आपको मालूम है खासकर केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर के क्या कर रही है। अभी जो आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने की व्यवस्था की गई है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका मतलब है कि अब राजनीति में महिलाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और केंद्र ने इसके बारे में जो कदम उठाए हैं जनता उसका भी समर्थन कर रही है। दोस्तों, इसी के साथ ही ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जो पहले से मंत्री थे वो पराजित हुए हैं, इस तरह के विधायक पराजित हुए हैं जिनका जनता से ज्यादा संपर्क नहीं रह गया था, जो एक प्रकार से आइवरी टावर में बैठे हुए थे, आइलैंड में रह रहे थे। जनता ने इस तरह के जनप्रतिनिधियों को लगभग लगभग नकार दिया है, तो राजनीति की एक नई दिशा की ओर ये चुनाव इंगित कर रहे हैं। जनता का कहना है कि आप हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमारे पास आए, हमसे मिलें, हमारी जरूरतों को समझें और हमारी जरूरतों के अनुसार फिर नीतियों का निर्माण करें। यह भी एक तथ्य बहुत ज्यादा उभर कर आता है। दोस्तों, ये जो मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सामान्य से तथ्य हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये तथ्य सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं, सरकार को बता रहे हैं? कुछ मायनों में सरकार का समर्थन है तो कुछ मायनों में सरकार का कहीं ना कहीं विरोध भी है, और कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि नहीं, जो केंद्र सरकार है वो मजबूत होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके आधार पर आप देखिए कि एक बात और क्या उभर करके आती है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि अब लोगों को लग रहा है, किन लोगों को? जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो भारत में पैसा लगाते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं, 2024 का भी जो चुनाव होगा वो लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का ही होगा, वही सत्ता में आएगी। इसका मतलब है कि स्थिर सरकार होगी, नंबर वन। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन चुनावों ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार का वो मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं, आपकी जो नीतियां हैं हम उनके पक्ष में हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए। तो अब आप देखिए कि किस तरह से मध्यावधि चुनाव एक प्रकार से सरकार के लिए मशाल का काम करती हैं, प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं। दोस्तों, इस आधार पर अब आप अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं कि क्या पूरे देश के चुनाव एक साथ होने चाहिए या अभी जो सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम को ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक फ्रेंड है डॉक्टर पुष्पा गौतम चेन्नई से, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।